एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में आज हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की, एक ऐसा नाम जिनके विचार आज भी हमारी दुनिया को, खासकर आप देखें तो लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों की हमारी जो समझ है उसे आकार देते हैं।
और इस सफर में हमारे गाइड हैं जॉन डन। हाँ, हम डन की लॉक पर लिखी दो खास व्याख्याओं, उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी और दूसरी है थियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लिबरलिज्म, इन्हीं के मुख्य विचारों को आज खंगालेंगे। और यकीन मानिए, ये किताबें लॉक को देखने का एक बिल्कुल कह सकते हैं नया नजरिया देती हैं।
बिल्कुल। और देखिए, लॉक के विचार, जैसे वो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार है या सरकार लोगों की सहमति से ही बननी चाहिए, ये सब तो हम जैसे सुनते ही आए, स्कूल में भी पढ़ाए।
हाँ हाँ
लेकिन जॉन डन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में लॉक को समझते हैं या हमने बस उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से, मतलब आज के हिसाब से ढाल लिया है।
और यही सवाल इस चर्चा को आज इतना जरूरी बना देता है ना, कि क्या उदारवाद की जड़ें वाकई उतनी धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं, जितना हम सोचते हैं, या कहानी कुछ और ही है। डन की नज़र से लॉक को देखना, मैं कहूंगा, काफी आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है।
तो चलिए पहले जॉन डन से ही थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। कौन है ये और इनकी बात में ऐसा क्या खास है जो हमें सुनना चाहिए?
देखिए, जॉन डन कोई मामूली इतिहासकार या राजनीतिक विचारक नहीं है। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल थ्योरी के एमेरिटस प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विचारों के इतिहास में आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं। लॉक पर उनका जो काम है वो दशकों की गहरी रिसर्च, मतलब आर्काइव्स में जाकर उस पर आधारित है।
अच्छा, और उनकी खासियत है कैम्ब्रिज स्कूल वाला तरीका, इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई कोई खास तरह की सोच है या स्कूल है?
हाँ, ये दरअसल एक तरीका है, एक मेथड है किसी विचारक को समझने का। ये स्कूल इस बात पर जोर देता है कि किसी लेखक के शब्दों का असली मतलब समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक और भाषाई संदर्भ को, मतलब कॉन्टेक्स्ट को, गहराई से देखना होगा।
मतलब
ये कि लॉक जब अधिकार या स्वतंत्रता जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे तो 17वीं सदी के इंग्लैंड में उनका ठीक ठीक क्या मतलब था, वो किन लोगों से बहस कर रहे थे उस वक्त, कौन सी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे।
अच्छा, यानी सिर्फ शब्द नहीं पकड़ने बल्कि उनके पीछे का पूरा माहौल, पूरी बहस समझनी जरूरी है। तो डन लॉक को सिर्फ एक किताबी दार्शनिक की तरह नहीं देखते?
बिल्कुल नहीं। डन के लिए लॉक एक जीते जागते इंसान हैं जो इंग्लैंड के सबसे उथल पुथल भरे दौर, आप सोचिए गृह युद्ध, क्रांति, धार्मिक टकराव, उसके बीच जी रहे थे और सोच रहे थे। डन पुराने दस्तावेजों, चिट्ठियों, यहां तक कि लॉक के जो अप्रकाशित लेख हैं उन तक जाते हैं। वो एक तरह से क्या कहते हैं, बौद्धिक जासूस की तरह काम करते हैं, उस पारंपरिक छवि के पीछे छिपे असली लॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो फिर डन की किताबों का मुख्य सार क्या निकलता है? वो लॉक के बारे में क्या सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं?
डन का सबसे बड़ा तर्क शायद ये है कि हम लॉक को टुकड़ों में नहीं समझ सकते, कि अच्छा ये उनकी ज्ञान की थ्योरी हो गई, ये उनकी राजनीति पर विचार हो गए और वो उधर उनका धर्म पर कुछ कहना है। डन कहते हैं नहीं, लॉक के सारे विचार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम की तरह हैं। उन्हें अलग अलग करके देखना शायद उनकी सोच के साथ अन्याय होगा।
ये तो दिलचस्प बात है। और उनके वो दो मुख्य दृष्टिकोण क्या हैं जो आपने शुरू में बताए थे, पॉलिटिकल बायोग्राफी और थियोलॉजिकल फाउंडेशन वाले?
हाँ, तो डन की एक व्याख्या जो उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी पर ज्यादा आधारित है, वो इस बात पर जोर देती है कि लॉक एक बेहद व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल विचारक थे। उनके सिद्धांत सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं थी, नहीं, वो 17वीं सदी की ठोस राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के जवाब थे।
जैसे कि?
जैसे राजा की शक्ति कितनी होनी चाहिए, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, क्रांति कब जायज है कब नहीं। वो जमीन से जुड़े सवालों के हल ढूंढ रहे थे, वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर नहीं सोच रहे थे।
और दूसरा दृष्टिकोण, वो धर्म वाला, वो थोड़ा चौंकाने वाला लगता है।
हाँ, और शायद यही डन का सबसे, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल या चौंकाने वाला तर्क है। उनकी दूसरी किताब थियोलॉजिकल फाउंडेशंस, वो ये कहती है कि लॉक को समझने की असली चाबी उनके गहरे धार्मिक विश्वासों में है।
अच्छा।
हाँ, इस नजरिए से अगर देखें तो लॉक का पूरा राजनीतिक दर्शन, उनके प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत हो, सहमति से सरकार का विचार हो, यहां तक कि धार्मिक सहिष्णुता की बात हो, ये सब कुछ उनके खास प्रोटेस्टेंट ईसाई, खासकर कैल्विनिस्ट विचारों और ईश्वर के प्रति इंसान के क्या कर्तव्य हैं उसकी समझ पर टिका है। डन यहां तक कह जाते हैं कि लॉक की राजनीति एक तरह की व्यावहारिक धर्मशास्त्र है, मतलब अप्लाइड थियोलॉजी।
व्यावहारिक धर्मशास्त्र, अप्लाइड थियोलॉजी।
हाँ, यानी कि वो राजनीतिक व्यवस्था के जरिए कहीं ना कहीं धार्मिक सिद्धांतों को लागू करने का एक तरीका ढूंढ रहे थे, ये उनका तर्क है।
वाह, ये तो पारंपरिक छवि से बिल्कुल ही अलग बात हो गई। तो फिर लॉक आखिर थे कौन, एक प्रैक्टिकल राजनीतिक विचारक या फिर एक धार्मिक विचारक या दोनों?
डन का जवाब शायद यही है कि वो दोनों थे, और उन्हें पूरी तरह समझने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा। उन्हें किसी एक खांचे में फिट करना, हाँ, आसान तो है पर शायद सही नहीं है, और मुझे लगता है यही डन की व्याख्याओं की खूबसूरती है। वो हमें लॉक की जटिलता, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं।
चलिए अब लॉक के विचारों की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं डन की नजरिए से। शुरुआत उनके जीवन और उस समय के माहौल से करते हैं।
लॉक का जन्म हुआ 1632 में। इंग्लैंड के लिए वो बहुत ही अशांत समय था। गृह युद्ध चल रहा था, राजा और संसद के बीच सत्ता का भयानक संघर्ष था। उनका परिवार प्यूरिटन पृष्ठभूमि का था, जो चर्च और राजशाही के सुधार के पक्ष में थे। ऑक्सफोर्ड में उनकी पढ़ाई हुई, लेकिन वहाँ की जो पारंपरिक किताबी शिक्षा थी उससे वो कुछ खास खुश नहीं थे, ऐसा लगता है। तो इन सब चीज़ों ने उनके मन में सवाल जरूर पैदा किए होंगे कि भाई, सत्ता का असली स्रोत क्या है, ज्ञान आता कहाँ से है।
और फिर उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उनकी सोच को एक प्रैक्टिकल दिशा दी, आपने जिक्र किया था।
हाँ, खासकर अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी, वो समय के एक बड़े प्रभावशाली राजनेता थे। लॉक उनके डॉक्टर बने, फिर सचिव और सलाहकार भी बन गए। इससे उन्हें राजनीति की जो अंदरूनी खींचतान होती है, साजिशें होती हैं, समझौते होते हैं, उसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला।
अच्छा।
और साथ ही उन्होंने थॉमस सिडनहैम जैसे मशहूर डॉक्टर के साथ भी काम किया। सिडनहैम अनुभव और अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन पर बहुत जोर देते थे, तो लॉक उनके महत्व के कायल हो गए। तो यहाँ डन दिखाते हैं कि कैसे लॉक का सिद्धांत और व्यवहार साथ साथ चल रहा था, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे थे।
अब आते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध काम पर, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान के बारे में उन्होंने क्या कहा था, ये तो बहुत फेमस है।
हाँ, ये किताब तो क्रांतिकारी थी अपने सबूत में। लॉक ने कहा कि हमारा मन जन्म के समय एक कोरी स्लेट, टैबला रासा जैसा होता है, बिल्कुल खाली, कोई भी विचार जन्मजात नहीं होता। सारा का सारा ज्ञान हमें अपने अनुभव से मिलता है।
अनुभव मतलब?
अनुभव यानी हमारी इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना और हमारे मन के अंदरूनी कामकाज, जैसे सोचना, याद करना, विश्वास करना।
बस यही स्रोत हैं ज्ञान के।
सुनने में तो ये दर्शन की फिलोसॉफी की बात लगती है, लेकिन आपने कहा था इसका एक राजनीतिक मतलब भी था, वो कैसे?
बिल्कुल। अब सोचिए, अगर कोई विचार जन्मजात नहीं है तो फिर वो दावा कैसे टिकेगा कि हाजा को ईश्वर ने शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार दिया है, है ना? या फिर चर्च के पादरियों को ईश्वर की तरफ से कोई खास ज्ञान मिला है।
हाँ, सही बात है।
लॉक का ये सिद्धांत दरअसल सत्ता के इन पारंपरिक दावों पर सीधा हमला था। ये कह रहा था कि ज्ञान और सत्ता का आधार अनुभव और तर्क होना चाहिए, न कि जन्म या परंपरा। कोई पैदाइशी हक नहीं होता। और यहीं पर जॉन डन का वो धार्मिक वाला एंगल फिट होता है,
है ना, कि तर्क ईश्वर की देन है।
हाँ, डन के अनुसार लॉक के लिए तर्क कोई ईश्वर विरोधी चीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो ईश्वर का ही दिया हुआ एक तोहफा था, एक क्षमता थी। इसी तर्क से इंसान प्राकृतिक कानून को समझ सकता है, यानी वो नैतिक नियम जो ईश्वर ने दुनिया के लिए बनाए हैं। और अनुभव से ज्ञान पाना, डन कहते हैं लॉक के लिए वो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को, उसकी रचना को समझने का तरीका था। तो एक तरह से ज्ञान की खोज ईश्वर को जानने की प्रक्रिया बन गई।
और ज्ञान की सीमाओं को समझना भी जरूरी था उनके लिए, ये बात भी आपने कही थी।
बहुत ज्यादा जरूरी। लॉक मानते थे कि इंसान का ज्ञान सीमित है, हम सब कुछ नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते, और ये समझना हमें विनम्र बनाता है, हम्बल बनाता है। डन कहते हैं कि इस बौद्धिक विनम्रता के सीधे राजनीतिक नतीजे थे, जैसे कि धार्मिक सहिष्णुता।
अच्छा, वो कैसे है ना, ये विनम्रता सहिष्णुता की ओर ले जाती है।
ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। चलिए अब राजनीति पर आते हैं। ये प्रकृति की अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर का विचार क्या था सरकार से पहले का जीवन?
लॉक ने कल्पना की, एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई सरकार ना हो, कोई राजा या संसद ना हो, तो इंसान कैसे रहेंगे। उनके समकालीन थे थॉमस हॉब्स। उन्होंने कहा था कि यह स्थिति तो बड़ी भयंकर होगी, सबका सबके खिलाफ युद्ध होगा, जीवन छोटा क्रूर होगा। लेकिन लॉक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति की अवस्था में भी एक कानून होता है, प्राकृतिक कानून, और ये कानून ईश्वर ने बनाया है।
और ये कानून क्या कहता है?
ये कानून कहता है कि सब इंसान बराबर और आजाद हैं, और क्योंकि सब बराबर हैं इसलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये एक नैतिक बंधन है जो सरकार के बिना भी लागू होता है।
तो ये अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये कहां से आए? क्या ये सरकार ने दिए?
यही लॉक की खास बात है, और डंग इस पर बहुत जोर देते हैं। लॉक के लिए ये अधिकार प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, यानी ईश्वर प्रदत्त हैं, गॉड गिवन है। ये सरकार बनने से पहले से मौजूद हैं, सरकार इन्हें देती नहीं है। सरकार का काम तो बस इनकी रक्षा करना है, इन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा रेडिकल विचार था।
अगर प्रकृति की अवस्था इतनी बुरी नहीं थी, मतलब हॉब्स जितनी बुरी नहीं थी, तो फिर लोगों ने सरकार बनाई ही क्यों? उनकी किताब टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने क्या तर्क दिया इस बारे में?
हाँ, लॉक ने माना कि प्रकृति की अवस्था परफेक्ट नहीं थी, उसमें कुछ कमियां थीं, कुछ असुविधाएं थीं। जैसे अगर कोई प्राकृतिक कानून तोड़ता है तो उसे सजा कौन देगा, कैसे देगा? कोई निष्पक्ष जज नहीं था, हर कोई अपने मामले में खुद ही जज बन जाता, जिससे झगड़े बढ़ सकते थे। अधिकारों की सुरक्षा थोड़ी अनिश्चित थी, इनसिक्योर थी, इसलिए लोगों ने आपस में मिलकर अपनी सहमति से, कंसेंट से एक समाज और सरकार बनाने का फैसला किया।
सहमति, ये शब्द बार बार आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है उनके सिद्धांत में।
हाँ, ये लॉक के पूरे राजनीतिक सिद्धांत का दिल है। सरकार की सारी शक्ति, सारी वैधता, लेजिटिमेसी लोगों की सहमति से आती है। डन बताते हैं कि ये उस समय के सबसे ताकतवर सिद्धांत, राजा के दैवीय अधिकार, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, जिसे सर रॉबर्ट फिल्मर जैसे लोग मानते थे, उस पर सीधा हमला था। फिल्मर कहते थे, राजा का अधिकार ईश्वर से सीधे आदम के जरिए विरासत में मिला है। लॉक ने कहा, नहीं, बकवास, अधिकार नीचे से आता है, लोगों से आता है।
और संपत्ति का सिद्धांत, प्रॉपर्टी की बात, उसे भी लॉक ने ईश्वर से जोड़ा था, जैसा आपने पहले इशारा किया।
हाँ, डन के अनुसार लॉक का संपत्ति का सिद्धांत सिर्फ कोई आर्थिक सिद्धांत नहीं था। लॉक ने कहा कि देखो, पृथ्वी और उसके सारे संसाधन तो ईश्वर ने पूरी मानव जाति को दिए हैं, कॉमन है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें अपना श्रम, अपनी मेहनत मिलाता है, जैसे जमीन को जोतकर फसल उगाता है या जंगल से लकड़ी काटकर घर बनाता है, तो वो चीज उसकी निजी संपत्ति बन जाती है।
अच्छा, मेहनत से?
हाँ, श्रम मिलाने से। और ऐसा करना लॉक के अनुसार ईश्वर के उस आदेश को पूरा करना भी था कि इंसान धरती को उपजाऊ बनाए और उसका इस्तेमाल करे, और फिर सरकार का एक मुख्य काम इसी संपत्ति की रक्षा करना है। और ध्यान दे, लॉक के लिए संपत्ति में सिर्फ जमीन जायदाद नहीं बल्कि जीवन और स्वतंत्रता भी शामिल थे। ये सब हमारी प्रॉपर्टी है।
ये सब तो ठीक है, सरकार सहमति से बनी, अधिकारों की रक्षा के लिए बनी, लेकिन अगर सरकार खुद ही लोगों के अधिकारों को कुचलने लगे तो तब क्या?
यहीं पर लॉक का सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक विचार आता है, क्रांति का अधिकार, राइट टू रेवोल्यूशन। इसे अराजकता का न्योता नहीं मानते,
नहीं।
लॉक का तर्क था कि सरकार एक ट्रस्ट की तरह है, एक जिम्मेदारी है जो लोगों ने उसे सौंपी है अपने अधिकारों की रक्षा करने की। अगर सरकार इस ट्रस्ट को तोड़ती है, खुद ही जालिम बन जाती है, लोगों के अधिकार छीनने लगती है, तो वो नाजायज हो जाती है, इललेजिटिमेट।
तो फिर
तब लोगों को न सिर्फ उसका विरोध करने का बल्कि उसे उखाड़ फेंकने का भी अधिकार है। बल्कि डन कहेंगे, लॉक के अनुसार ये कर्तव्य भी है। ये सरकार के खिलाफ बगावत नहीं बल्कि सरकार द्वारा की गई बगावत, यानी कानून तोड़ने के खिलाफ आत्मरक्षा है, डिफेंस है।
ये तो वाकई क्रांतिकारी सोच थी उस जमाने के हिसाब से। अब थोड़ी बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता की। उनकी किताब थी अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, उसमें क्या खास था?
लॉक ने जोरदार तरीके से कहा कि सरकार को लोगों के धार्मिक विश्वासों में दखल नहीं देना चाहिए, उन्हें टॉलरेंट होना चाहिए। लेकिन डन फिर हमें याद दिलाते हैं, सावधान, इसका आधार आज वाला सेक्युलर विचार नहीं था कि धर्म निजी मामला है इसलिए सरकार दूर रहे। नहीं, लॉक का तर्क खुद धार्मिक था।
अच्छा, वो कैसे?
उन्होंने कहा कि सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास दिल का मामला है, वो अंदर से आता है। जबरदस्ती, तलवार के जोर पर किसी को सच्चा ईसाई नहीं बनाया जा सकता, ईश्वर ऐसा नहीं चाहता। सरकार का काम है दुनियावी चीजों की देखभाल करना, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, आत्माओं को बचाना सरकार का काम नहीं है, वो काम चर्च का है, और वो भी बिना जबरदस्ती के, समझा बुझाकर।
लेकिन उनकी इस सहिष्णुता की भी कुछ सीमाएं थीं, वो सबके लिए नहीं थी।
हाँ, और ये दिखाता कि लॉक कितने यथार्थवादी, या कह लें अपने समय के इंसान भी थे। डन बताते हैं कि लॉक ने नास्तिकों को सहिष्णुता के दायरे से बाहर रखा।
क्यों?
इसे किया जा सकता है, समाज का नैतिक ताना बाना टूट जाएगा। और उन्होंने कैथोलिकों को भी बाहर रखा।
कैथोलिकों को क्यों?
क्योंकि उस समय ये डर था, और शायद राजनीतिक हकीकत भी थी, कि उनकी वफादारी अपने देश के राजा के प्रति नहीं बल्कि रोम के पोप के प्रति है, जो एक विदेशी ताकत थे। तो ये दिखाता है कि उनके सिद्धांत हवा में नहीं थे, वो उस समय की राजनीतिक सच्चाइयों और डर से भी जूझ रहे थे।
और आखिर में शिक्षा पर उनके क्या विचार थे, उसका भी जिक्र जरूरी है।
हाँ, लॉक ने शिक्षा पर भी काफी कुछ लिखा। उन्होंने रट्टा मारने वाली पढ़ाई के बजाय चरित्र निर्माण, तर्क करना सीखने और व्यवहारिक हुनर सीखने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी ठूसना नहीं है, बल्कि एक नेक, समझदार और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना है। तो ये उनके ज्ञान, समाज और राजनीति के बारे में जो बाकी विचार थे, उनसे पूरी तरह मेल खाता था, एक पूरी सोच थी।
तो जॉन डन की इन व्याख्याओं से गुजरते हुए लॉक के विचारों से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज क्या निकल कर आती हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली और जरूरी बात जो डन हमें दिखाते हैं वो है सिद्धांत और व्यवहार का गहरा रिश्ता, है ना। लॉक कोई हाथी दांत की मीनार में बैठकर सिर्फ फिलॉसफी नहीं लिख रहे थे, उनके विचार उनके जमाने की उथल पुथल राजनीतिक लड़ाइयों और असली समस्याओं से पैदा हुई थे। डन की पॉलिटिकल बायोग्राफी इसी बात को बार बार रेखांकित करती है।
दूसरी बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो है संदर्भ का महत्व, कॉन्टेक्स्ट इज किंग जिसे कहते हैं। लॉक को समझने के लिए उनके 17वीं सदी के इंग्लैंड को समझना जरूरी है, और डन की थियोलॉजिकल किताबें दिखाती है कि उनके धार्मिक विश्वासों को समझे बिना हम उनकी राजनीति को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते शायद। यह हमें सिखाता है कि किसी भी विचारक को सिर्फ आज के चश्मे से देखना कितना अधूरा हो सकता है।
तीसरा, जाहिर है प्राकृतिक अधिकारों का विचार, कि कुछ अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इतने बुनियादी हैं, इतने फंडामेंटल हैं कि वो सरकार से भी पहले आते हैं, वो ईश्वर से मिलते हैं। सरकार का काम उन्हें देना नहीं, सिर्फ बचाना है। ये सोच आज भी दुनिया भर में मानवाधिकारों की जो बहस चलती है उसकी नींव है। हम आज भी अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉक की आवाज उसमें सुनाई देती है।
चौथा, सरकार का आधार लोगों की सहमति है, कंसेंट। कोई राजा या कोई सरकार सिर्फ इसलिए राज नहीं कर सकती कि वो ताकतवर है या पुराने जमाने से चली आ रही है, नहीं, उसे लोगों की मंजूरी चाहिए। ये लोकतंत्र का बिल्कुल बुनियादी सिद्धांत है कि असली मालिक, सॉवरेन, वो जनता है।
और पांचवा, जिसे मैं आज के लिए बहुत प्रासंगिक मानता हूं, वो है बौद्धिक विनम्रता और सहिष्णुता का महत्व। लॉक ने सिखाया कि हमें ये मानना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते, हमारा ज्ञान सीमित है, और धार्मिक मामलों में दूसरों पर अपनी आस्था थोपना बेकार भी है और गलत भी। ये दोनों बातें, अपने ज्ञान की सीमाएं जानना और दूसरों के विश्वासों का सम्मान करना, आज के इतने बटे हुए पोलराइज्ड समाज में बहुत बहुत जरूरी है।
हाँ, ये बात है। लॉक के लेखन से कुछ ऐसी पंक्तियां, कुछ ऐसे कोट्स भी हैं जो आज तक गूंजते हैं, और डन की व्याख्याएं उन्हें और गहरा मतलब देती हैं, जैसा आपने कहा।
हाँ बिल्कुल, जैसे सरकार के मकसद पर यह बात कितनी साफ और सीधी है। पुरुषों के राष्ट्रमंडल में एकजुट होने का महान और मुख्य उद्देश्य उनकी संपत्ति, यानी उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का संरक्षण है। कितना लिमिटेड रोल बता रहे हैं सरकार का। मतलब सरकार का काम बहुत बड़ा और फैलावा नहीं होना चाहिए, उसका मुख्य फोकस नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होना चाहिए, सीमित सरकार का विचार।
या प्राकृतिक कानून पर ये कहना, सभी समान और स्वतंत्र होने के कारण किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सिर्फ अधिकार नहीं देता, ये एक जिम्मेदारी भी तय करता है। आपकी आजादी वही खत्म होती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है ना, वो वाली बात।
और ये वाला मेरा पसंदीदा है, कानून और स्वतंत्रता के रिश्ते पे। कानून का अंत उन्मूलन या रोकना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षित करना और बढ़ाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि कानून मतलब बंधन, रोक टोक, लेकिन लॉक कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा कानून हमें दूसरों की मनमानी से बचाता है और इस तरह हमारी असली आजादी को बढ़ाता है। ये एक सुरक्षित दायरा बनाता है जिसमें हम जी सकें।
सहिष्णुता पर भी उनकी ये बात सोचने पर मजबूर करती है। आत्माओं की देखभाल नागरिक मजिस्ट्रेट से संबंधित नहीं हो सकती। सच्ची आस्था मन की आंतरिक प्रेरणा में निहित होती है। धर्म और राज्य के काम बिल्कुल अलग अलग है। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी देखना है, लोगों का धर्म तय करना या बचाना नहीं।
और आखिर में सहमति पर ये वाक्य जो सरकार की नींव बताता है, जिस एकमात्र तरीके से कोई भी अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को त्यागता है वह अन्य पुरुषों के साथ एक समुदाय में शामिल होने के लिए सहमत होना, यानी सरकार हम पर राज करने का हक हमसे ही लेती है। ये कोई ऊपर से आया फरमान नहीं है, यह हमारा अपना फैसला है।
ये विचार सदियों पुराने हैं, पर जैसा आपने कहा आज भी इनकी गूंज सुनाई देती है। इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है आज के भारत में?
अरे बहुत गहरा लेना देना है। सबसे पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही देख लीजिए। जब हम वोट डालते हैं, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं, जब हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, हम जाने अनजाने लॉक के विचारों को ही जी रहे होते हैं। सीमित सरकार, कानून का राज, अधिकारों की गारंटी, ये सब लॉक की विरासत का हिस्सा है।
और धार्मिक आजादी का मुद्दा, वो तो आज भी कितना कितना ज्वलंत रहता है।
बिल्कुल, भारत जैसे विविधता भरे देश में ये सवाल तो हमेशा सामने रहता है कि राज्य का धन से क्या रिश्ता होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे सुरक्षित हों। लॉक का वो तर्क कि आस्था थोपी नहीं जा सकती, वो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। हाँ, उनकी अपनी सीमाएं थी जैसा हमने देखा, लेकिन वो मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है कि सरकार को सभी धर्मों से एक निष्पक्ष दूरी बनाकर रखनी चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए।
एक और बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो है अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन। आपने भी इसका जिक्र किया था, लॉक ने अधिकारों पर जोर दिया पर प्राकृतिक कानून के तहत जिम्मेदारियां भी बताई। आजकल हम अक्सर अपने हक की बात तो बहुत करते हैं, जो जरूरी भी है, पर कभी कभी भूल जाते हैं कि समाज में रहने का मतलब दूसरों के हक का सम्मान करना भी है। यह संतुलन साधना कितना जरूरी है।
और आखिर में शायद सबसे जरूरी आज के लिए, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। लॉक ने कहा था कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, किसी अथॉरिटी ने कह दिया इसलिए मत मान लो, खुद सोचो, तर्क करो, सबूत देखो। आज के सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के ज़माने में ये सलाह कितनी कितनी कीमती है। हर खबर, हर दावे पर सवाल पूछना, ये कहाँ से आया है, इसका सबूत क्या है, क्या ये तर्कसंगत है, ये लॉक से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन एवरीथिंग।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? जॉन डन की नज़र से लॉक को देखकर सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है आपको?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि महान विचार कभी शून्य में पैदा नहीं होते, वो हमेशा अपने समय की चुनौतियों, संघर्षों और सवालों से जूझते हुए निकलते हैं। लॉक सिर्फ किताबों में खोए रहने वाले प्रोफेसर नहीं थे, वो अपने दौर की समस्याओं का हल ढूंढ रहे थे, चाहे वो राजनीतिक हो या बौद्धिक। डन की पॉलिटिकल बायोग्राफी इसी जमीनी हकीकत को बहुत अच्छे से सामने लाती है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली या कहूँ आंखें खोलने वाली बात ये रही कि जिसे हम अक्सर पश्चिम का सेक्युलर लिबरलिज्म, धर्मनिरपेक्ष उदारवाद मान लेते हैं, उसकी जड़ें कितनी गहरी धार्मिक सोच और बहसों में हो सकती हैं। डन की थियोलॉजिकल फाउंडेशन वाली व्याख्या ये दिखाती है कि विचारों का इतिहास कितना जटिल, कितना परतदार होता है। लॉक को सिर्फ आधुनिक आज के नज़रिए से देखना शायद उनकी पूरी कहानी नहीं बताता।
बिल्कुल, और लॉक आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने वो बुनियादी सवाल उठाए जो आज भी हमारे सामने वैसे ही खड़े हैं। आज़ादी और व्यवस्था में संतुलन कैसे हो, सरकार को असली शक्ति कहाँ से मिलती है, समाज में अलग अलग विचारों और विश्वासों के लोग शांति से साथ कैसे रहें, अधिकारों का असली मतलब क्या है। डन हमें लॉक को उनके अपने संदर्भ में समझने में मदद करते हैं, जिससे हम इन सवालों पर आज शायद ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं।
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लॉक ने कहा था कि संपत्ति का अधिकार आपके श्रम से आता है, जब आप प्रकृति में अपनी मेहनत मिलाते हैं। आज की दुनिया में सोचिए, जहां इतनी सारी संपत्ति विरासत में मिलती है, या स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बनती है, या फिर डिजिटल दुनिया में बिना सीधे हाथ पैर हिलाए कंटेंट क्रिएशन या कोडिंग से बनती है। क्या लॉक का ये श्रम वाला सिद्धांत आज भी उतना ही मायने रखता है, या हमें इसे नए सिरे से सोचने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।